آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر.
Actually, this is the first time I'm discovering that we could find a place, a city, small city like Lucknow, in any other part of the world.
I went over to Ireland last year. We stopped off at Abu Dhabi, and funnily enough, we were sitting in the lounge, and I looked up at the where all the planes and that are going to, and I happened to see Lucknow in there. I just had a bit of a quiver in my mind as to I'd like to go there one day and have a look at it, but I just thought it was quite funny. You could get a plane to Lucknow when Lucknow out here is only about a town of about 200 people.
इतिहास नामों की नावों पर चढ़कर सवारी करता है. भारत के उत्तर में हजारों साल पुराना एक शहर है लखनऊ. खूबसूरत इमारतों के इस शहर की हर ईंट इतिहास का एक पन्ना है. जाने कैसे इन्हीं पन्नों में से कोई एक पलटा और ये नाम 10,000 किलोमीटर दूर न्यू साउथ वेल्स के ऑरेंज के पास एक गांव तक पहुंच गया. ऑरेंज से करीब 10 किलोमीटर सिडनी की ओर बसा है लखनऊ. भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की अनोखी दास्तान जो सुनहरे इतिहास की जमीन पर सिमटा एक वर्तमान है.
I don't really know the connection, but I think I can't really tell you what the connection is. There is some connection, and that's why they called it Lucknow.
कोई क्यों नहीं जानता कि ये नाम हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचा होगा?
The very unfortunate thing is that all of the Orange newspapers, all of their first newspapers from 1859 through to 1899, all lost in a flood in Orange. They were in a basement in Lord's Place at the newspaper office, and we've only got a few pages for the whole of that 50 odd years.
इतिहास तो बहता पानी है. जब एक रास्ता बंद हो जाता है वो बहने का दूसरा रास्ता तलाश लेता है. जब दस्तावेज नहीं होते वो किस्से कहानियों में बहता है. लखनऊ नाम के साथ भी कई किस्से जुड़े हैं और ये किस्से बहते हैं लखनऊ की असल कहानी के इर्द गिर्द जो मुश्किल से 200 साल पुरानी है.
This general area, as you most people know, they got across the Blue Mountains in 1812, and then Cox managed to get a road across in 1813. 1815, Macquarie visited Bathurst and proclaimed it a town. And that opened up the whole west for the colony, which was a really big deal.
और फिर 1851 में इतिहास ने सुनहरी करवट ली. इस इलाके में सोने की खान मिली, जिसके बाद शुरू हुआ न्यू साउथ वेल्स का अपना गोल्ड रश. बताते हैं कि महीने भर में जगह जगह लोग सोना खोज रहे थे, लखनऊ में भी, जो तब तक लखनऊ नहीं हुआ था.
In June 1851, it's about 2,000 people down at Ophir, and there's about 300 coming each day and 300 people leaving each day. So that number of people running around looking for gold, it was very short time that they followed the Summerhill Creek back up here to Lucknow.
जिसे आज लखनऊ कहते हैं, तब वो विलियम चार्ल्स वेंटवर्थ की निजी जमीन थी. मशहूर खोजी लेखक पत्रकार वेंटवर्थ ने अपनी जमीन को सोने की खदान के लिए लीज पर दिया और तब एक कंपनी बनाई गई जो शायद ऑस्ट्रेलिया की पहली गोल्ड माइनिंग कंपनी थी. अप्रैल 1852 में इस जगह को वेंटवर्थ गोल्ड फील्ड कंपनी को बेचा गया था, जो 1860 तक रही. 1862 में इस जगह को जनता के लिए खोल दिया गया और उसके अगले ही साल वेंटवर्थ डिगिंग्स की आबादी 200 को पार कर गई थी. वहां रहने वाले लोगों को लगा कि अब इनका अपना डाकखाना होना चाहिए. एक याचिका दर्ज की गई तो तो अधिकारियों ने कहा जगह का नाम क्या होगा।
When they petitioned to get a post office here in 1863, at which they were successful, they decided to call the village Lucknow.
और इस तरह 1 जुलाई 1863 को ये जगह लखनऊ कहलाई। क्यों इस शहर के पहले पोस्टमास्टर जॉन फोर्ड रे और उनके साथियों ने ये नाम चुना? अपने किताब लखनऊ अ वेरिटेबल गोल्ड माइन में कैरिन कुक ने इस बारे में लिखा है,
लखनऊ नाम चुनने के पीछे कई वजह रही होंगी। उस वक्त सारे अंग्रेजी भाषी जगत में भारत के प्रांत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की घेराबंदी की चर्चा थी। मई से नवंबर 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान भारतीयों ने शहर को घेर लिया था। लखनऊ में रह रहे लोगों के पास खाना पीना भी नहीं बचा था। तब बड़ा कत्लेआम हुआ था, कई अंग्रेज कत्ल कर दिए गए थे, बच्चों और औरतों समेत।
लखनऊ की घेराबंदी का दौर खौफनाक था। भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों ने उस वक्त जो झेला उसकी चर्चा हर ब्रिटिश कॉलोनी में थी, ऑस्ट्रेलिया में भी। कैरिन कुक का अनुमान यह है कि लखनऊ की लड़ाई में खदानों की अहम भूमिका थी। अपनी किताब में वो लिखती हैं,
अंग्रेज और भारतीय दोनों ने ही ये लड़ाई खदानों के जरिए लड़ी थी। वे लोग एक दूसरे की जमीन के नीचे खदान खोद कर उन्हें धमाके से उड़ा देते थे। उससे ऊपर जमीन पर भारी नुकसान होता, इमारतें गिर जातीं और कई जानें जातीं। वेंटवर्थ गोल्ड फील्ड्स में भी खनन जमीन के नीचे हो रहा था, जो भारत के लखनऊ जैसा ही था।
लेकिन ये एक कयास ही है और लखनऊ में ऐसे कई किस्से कहे जाते हैं, जैसे कि खान के लिए क्लार्क के तौर पर काम करने वाले एक थे मिस्टर रे, और ये साहब भारत के लखनऊ की घेराबंदी में घायल हुए थे, इसलिए उन्होंने जगह का नाम लखनऊ रखवा दिया।
Now, it is pretty close to the siege of Lucknow in 1857, I think it was. 1863, it's only 6 years down the track, and the way people moved around in colonial times, you could bet your socks there would have been people from Lucknow here.
एक और किस्सा स्कॉटिश लहजे को लेकर कहा जाता है। कहते हैं कि ये लखनऊ नहीं बल्कि लखनऊ है। लखनऊ इसलिए क्योंकि इस जमीन ने सोना उगला है। बताते हैं कि 1851 में सोना मिलने से 1950 के दशक में खनन बंद होने तक इस जगह से 18,000 किलो सोना निकाला गया था। एक पत्थर तो 76 किलो का था। आज लखनऊ एक छोटा सा गांव है जहां स्कूल भी बंद हो चुका है। मिचिल हाईवे के दोनों ओर खेत हैं और किसानों के घर। इतिहास के पन्ने पुराने पड़ते हैं, इतिहास नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के लखनऊ का इतिहास तो सुदूर बसे भारतीय उपमहाद्वीप से ताल्लुक रखता है, इसलिए कोई भी भारतीय जब यहाँ से गुजरता है तो ये नाम देखकर चौंकता है और इतिहास के साथ मुस्कुरा देता है।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।